सती पठान शिविर का पहला दिन पूरा हुआ है। पहला दिन पूरा हुआ है। साधना वही है, चाहे उसे सती पठान कहें अथवा विपश्यना कहें, अंतर केवल इतना है कि ये जो शाम के प्रवचन होंगे वे भिन्न होंगे, अलग प्रकार के होंगे। धर्म की बात तो वही समझाई जाएगी, लेकिन इन प्रवचनों में भगवान द्वारा दिए गए एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश का पारायण भी करेंगे, उन्हीं के शब्दों में पारायण करेंगे, उसे समझेंगे, ताकि इस साधना का जो सैद्धांतिक पक्ष है वो और अधिक स्पष्ट हो जाए, ताकि काम करने का उत्साह अधिक बढ़े। ये विद्या कैसी है, ये साधना विधि कैसी है, ये ध्यान प्रणाली कैसी है, इसे और अच्छी तरह स्पष्टतया समझ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह काम करेंगे, ज़्यादा उत्साह से, ज़्यादा उमंग से काम करेंगे। तो इसलिए सामान्य विपश्यना के सामान्य तीन शिविर कर लेने के बाद और कम से कम एक वर्ष तक इसका अभ्यास कर लेने के बाद साधक इस लायक हो जाता है कि जरा और गहराई से समझें कि ये कैसी विद्या है, ये कैसी साधना है, कैसी ध्यान प्रणाली है, इसके सैद्धांतिक पक्ष को भी समझें। बस फर्क यही होगा, काम तो वही करना है, शीलों का कड़ाई के साथ पालन करना है, क्योंकि वो तो आधार हैं। आधार कमजोर हो जाएगा तो साधना ही नहीं हो पाएगी। तो शीलों का कड़ाई से पालन करते हुए समाधि को दृढ़ करना है, और समाधि को दृढ़ करने के लिए वही जो हमेशा करते रहे आनापान का काम करेंगे, ये कोशिश अवश्य करेंगे कि ये भटकने वाला मन नासिका के द्वारों पर सांस को जानने के काम में लगातार कितना रह सकता है उतना प्रयत्न करें, तो समाधि और पुष्ट होगी। और फिर तीन दिनों के आनापान के बाद उसी प्रकार विपश्यना का काम शुरू कर देंगे। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, सारे शरीर में जो संवेदनाएं हो रही हैं उन्हें महसूस भी करेंगे, और साथ साथ उन संवेदनाओं के आधार पर अपनी प्रज्ञा जगाएंगे, उसके स्वभाव को समझेंगे, ये अनित्य है, ये नश्वर है, ये भंगुर है, ये परिवर्तनशील है। अनुभूतियों से इस सच्चाई को जानेंगे, तो इस शरीर के प्रति, इस चित्त के प्रति, इन दोनों के संयोग से होने वाली इन संवेदनाओं के प्रति जो तादात्म्य भाव, इसके प्रति मैं मेरे का भाव बहुत दृढ़ हो गया भीतर, वो टूटने लगेगा। मैं मेरे का भाव टूटने लगेगा तो इसके प्रति जो आसक्ति है वो टूटने लगेगी, इसके प्रति आसक्ति टूटने लगेगी तो इसके प्रति जागने वाला राग टूटने लगेगा, इसके प्रति जागने वाला द्वेष टूटने लगेगा, बस मुक्ति का रास्ता खुला। तो यही काम हर शिविर में करते हैं, यही काम अब भी करेंगे। प्रवचनों में जरा सी तब्दीली, सैद्धांतिक पक्ष को और जरा गहराइयों से समझने के लिए और फिर भगवान की वाणी का पारायण, वो अपने आप में बड़ा उत्साहवर्धक होता है, प्रेरणादायक होता है, वो करेंगे। धर्म के तीनों सोपानों को अच्छी तरह समझेंगे। तीन सोपान होते हैं धर्म के, माने तीन सीढ़ियां होती हैं धर्म की, या यूं कहें तीन क्षेत्र होते हैं धर्म के, या यूं कहें तीन पांवड़े होते हैं धर्म के, तीन कदम, महत्वपूर्ण कदम। पहला जो है, पहला हिस्सा है, पहला सोपान कहें, पहली सीढ़ी कहें, पुरानी भाषा में 2500 वर्ष के भारत की जनता की भाषा में उसे पर्यत्ति कहते थे। उससे जो अगली सीढ़ी है उसे पटिपत्ति कहते थे, और उससे जो अगली सीढ़ी है उसे पटिवेधन कहते थे। ये खूब समझेंगे अब, पर्यत्ति क्या होती है, उसका क्या लाभ होता है, अगला कदम पटिपत्ति क्या होता है, उसका क्या लाभ होता है, अगला कदम पटिवेधन क्या होता है, उसका क्या लाभ होता है, खूब अच्छी तरह समझेंगे। पर्यत्ति पटिपत्ति के लिए हो, पटिपत्ति पटिवेधन के लिए हो, पटिवेधन विमुक्ति के लिए हो। अंतिम लक्ष्य तो विमुक्त होना है, सारे विकारों से नितांत विमुक्त हो जाना है, केवल मानस के ऊपरी ऊपरी हिस्से तक अपने विकारों से मुक्त हो जाएं तो सही माने में मुक्त नहीं हुए। विकारों की जड़ें निकाल दें, अपने मानस की गहराइयों तक विकारों की जड़ें निकालें तो मुक्ति प्राप्त होती है। तो ये सारा समझेंगे कि प्रतिपादन करते हुए, प्रतिवेदन करते हुए कैसे जड़ों तक अपने विकारों को निकालते हैं, और साथ साथ वो काम करेंगे। केवल बुद्धि विलास के लिए नहीं है, केवल वाणी विलास के लिए नहीं है, इस तरह की जो साधना केंद्र सौभाग्य से भारत में फिर ये परंपरा आरंभ हुई है, और भारत के अनेक स्थानों पर ऐसे केंद्र खुल रहे हैं, खुलते ही चले जाएंगे। ये खोई हुई विद्या भारत में आई है, ऐसे ही विश्व में स्थान स्थान पर इस तरह के साधना केंद्र खुल रहे हैं और खुलते ही चले जाएंगे। तो चाहे कोई इस प्रकार का साधना केंद्र इस देश में हो, चाहे विदेश में हो, जहां कहीं विपश्यना का साधना केंद्र होगा वो पटिपत्ति के लिए होगा, पटिवेदन के लिए होगा। मानो उसका जो व्यवहारिक पक्ष है, प्रैक्टिकल पक्ष है, उसी के लिए साधना केंद्र हुआ करते हैं। साधना करनी है, कोई बातें नहीं करनी, ये अलग बात हुई कि जो शाम के प्रवचन है वो कैसे साधना करनी है इसे समझाने के लिए हैं। तो समझेंगे और फिर काम ही करेंगे, काम ही करेंगे। सुबह 4:30 से रात को 9:30 बजे तक काम ही करना है, और आगे जब गहराइयों में उतरेंगे, लंबे शिविरों में बैठेंगे, 20 दिन के शिविर में कि 30 दिन के शिविर में कि 45 दिन के शिविर में कि उससे भी लंबे शिविरों में बैठेंगे, तब तो धीरे धीरे इस अवस्था पर पहुँचते चले जाएंगे कि रक्तिंदीव मतंदितो, रात और दिन निरालस होकर काम करना है, रात दिन काम करना है, ऐसा होने ही लगेगा। तो काम करने का स्थान है ये, तपोभूमि है ये, कहीं कोई सामान्य विद्यालय न बन जाए। इसके लिए हर समझदार लोगों को आज भी और भविष्य में भी सतर्क रहना पड़ेगा। सिद्धांतों की बात को लेकर के, भगवान की वाणी को लेकर के कोई खोज करनी है, कोई अनुसंधान करना है, तो समीप में और कोई स्थान हो वहां हो। ये जो तपने की भूमि है इसमें तो केवल तपना हो, बुद्धि के स्तर पर समझना है तो बस शाम के प्रवचनों में ही समझें। ये बात ख्याल रखनी होगी। तो बुद्धि के स्तर पर जो समझना है उसे ही पर्यत्य कहें। आज की हिंदी में ये शब्द बिल्कुल लुप्त हो गया, इसका प्रयोग लुप्त हो गया। मैं समझता हूँ आज की भारत की सारी भाषाओं में लुप्त हो गया पर्यत्य। और इसका पुराना उद्गम देखें तो पर्याप्ति, तो पर्याप्ति भी बड़ा अजीब सा शब्द है, नहीं समझ में आता लोगों को क्या पर्याप्ति। हमें इसके अर्थ को समझना चाहिए, इसके भाव को समझना चाहिए। आज हिंदी में पर्याप्त शब्द चलता है, पर्याप्ति, पर्याप्त माने पर्याप्त ज्ञान हो बौद्धिक स्तर पर, तो धर्म का पर्याप्त ज्ञान हो। क्या पर्याप्त? कि कम से कम इतना ज्ञान तो हो कि हम कैसे चलें भाई, धर्म को कैसे धारण करें, इतना तो हो। अब कुछ लोगों के लिए इतना ही पर्याप्त है, कुछ लोगों के लिए और अधिक पर्याप्त है, कुछ लोगों के लिए और अधिक पर्याप्त है। अनेक जन्मों से बात पका हुआ व्यक्ति हो तो उसको तो एक गाथा ही पर्याप्त है धर्म की। धर्म की दो लाइनें सुन लेगा, इतने में उसमें ऐसा जाग जाएगा, पटिपत्ति ऐसी जाग जाएगी, पटिवेदन ऐसा जाग जाएगा, मुक्त अवस्था पर पहुंच जाएगा। जैसे भगवान के दोनों अग्र शिष्य सारिपुत्र और महामोग्गलायन, बस दो लाइनें ही तो सुनी, उसी से जाग पड़ा। तो पर्याप्त किसके लिए, कितना पर्याप्त? वैसे तो भगवान की वाणी जहां से उठा के पढ़ेंगे अमृत ही अमृत है, मधु ही मधु है, इतनी प्रिय लगेगी। और साधक को तो इतनी प्रिय लगेगी जैसे भगवान मुझसे ही बात कर रहे हैं, मुझको समझा रहे हैं ऐसे करना है, ऐसे करना है। ये सारी की सारी वाणी संकलित की गई, सारी वाणी का पारायण कोई करे, करे तो अच्छी बात, मना नहीं है, लेकिन अनिवार्य नहीं साधक के लिए कि सारी वाणी का पारायण करे। कुछ सूत्र, वैसे तो सारी वाणी में विपश्यना ही भरी हुई, क्योंकि सारे विश्व को यही उनके सबसे बड़ी देन थी, लेकिन फिर भी कुछ सूत्र ऐसे हैं जिनमें कि भाव स्पष्टतया समझाया गया। उनमें से ये एक सूत्र है, महासतिपट्ठान सूत्र, सतिपट्ठान सूत्र। तो इस शिविर में इसका पारायण करेंगे। हो सकता है कुछ साधकों के लिए यही पर्याप्त हो जाए, किसी को और अधिक अध्ययन करना हो तो करे। तो जो सैद्धांतिक पक्ष है धर्म का, उसके लिए पर्यत्य शब्द सुने। पुस्तक हो तो पढ़ें, तो सुना हुआ ज्ञान है, पढ़ा हुआ ज्ञान है। पुरानी भाषा में इसी को श्रुत ज्ञान कहते थे, अपना ज्ञान नहीं है, पराया ज्ञान है। अनुभूति किसी और को हुई, साक्षात्कार किसी और को हुआ, पर जिसको साक्षात्कार हुआ वो लोगों को समझाने के लिए कोई भाषा का प्रयोग करेगा। उसने अपनी अनुभूति को शब्दों पर उतारा, तो जो साखी हुई वो शब्द बन गई। बस पर्यत्य ये शब्द है, ये पर्यत्य जो शब्द है, किसी के शब्द हैं, ये हमें प्रेरणा देंगे, मार्गदर्शन देंगे। लेकिन यही शब्द जब हमारे लिए साखी बन जाएंगे, माने हम साक्षात्कार कर लेंगे, तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन पहले धर्म की बात सुने तो सही, पुराने साहित्य में दो शब्द आते हैं, एक सुतवा एक असुतवा। सुतवा माने श्रुतवान, जिसने सुना है। असुतवा माने अश्रुतवान, जिसने सुना ही नहीं। अब इन दोनों को देखें तो जो सुतवा है वो बड़ा भाग्यशाली है, असुतवा रह गया। बेचारे को मनुष्य का जीवन मिला, सुनने के लिए कान भी मिले, बुद्धि भी मिली, सुन ही नहीं पाया। सारे जीवन भर ये सुन ही नहीं पाया कि धर्म क्या होता है, धर्म के सही मायने क्या होते हैं। तो बेचारा सारा जीवन भर किसी कर्म कांड को धर्म मानता चला, किसी वेशभूषा को धर्म मानता चला, किसी रीति रिवाज को धर्म मानता चला, किसी पर्व त्योहार को धर्म मानता चला, किसी व्रत उपवास को धर्म मानता चला, किसी दार्शनिक मान्यता को धर्म मानता चला। बेचारे की समझ में नहीं आई धर्म क्या होता है, सुना ही नहीं कभी। तो वो जो सुतवा है, श्रुतवान है, उसने सुना तो सही धर्म क्या होता है। धर्म स्वभाव को कहते हैं, लक्षण को कहते हैं, प्रकृति को कहते हैं, निसर्ग को कहते हैं, धर्म कुदरत को कहते हैं, कुदरत के नियमों को कहते हैं, विश्व के विधान को कहते हैं, रित को कहते हैं। ये बात सुनेगा तो बाकी सारे छिलके लगने लगेंगे, अरे किसको धर्म माने जा रहा हूं, स्वभाव क्या। मेरे भीतर मेरे चित्त में जो भी चित्त वृत्ति जागी उसका स्वभाव क्या। दूषित चित्त वृत्ति जागी तो उसका स्वभाव मुझे व्याकुल बनाना और सारे वातावरण को व्याकुल बनाना, ये उसका स्वभाव है। इसी प्रकार चित्त को निर्मल करके उसमें सद्गुण जागे, अच्छी वृत्तियां जागी, मैत्री जागी, करुणा जागी, सद्भावना जागी, उसका स्वभाव क्या। उसका स्वभाव अपने भीतर शांति जगाना, औरों के लिए शांति का निर्माण करना। हो तो ये कुदरत का कानून है जो सब पर लागू होता है, वो किसी एक संप्रदाय विशेष पर नहीं, एक जाति विशेष पर नहीं, एक वर्ग विशेष पर नहीं, एक वर्ण विशेष पर नहीं, एक देश विशेष पर नहीं, सब पर लागू होता है। जो अपने मन में विकार जगाएगा व्याकुल हो ही जाएगा, जो विकारों से मुक्त हो जाएगा वो शांति महसूस करने लगेगा, विमुक्ति की शांति महसूस करने लगेगा। ये बात सब पर लागू होती है तो बात समझ में आएगी। धर्म सार्वजनीन होता है, सार्वदेशिक होता है, सार्वकालिक होता है, धर्म सनातन होता है, वो नहीं बदलता। हजारों वर्ष पहले भी यही धर्म था, क्रोध जगाने वाला हजारों वर्ष पहले भी इतना ही व्याकुल होता था, आज भी इतना ही व्याकुल होता है, हजारों वर्ष बाद भी इतना ही व्याकुल होगा। चित्त को निर्मल करके उसे सद्गुणों से भरना, मैत्री करुणा सद्भावना से भरने वाला व्यक्ति हजारों वर्ष पहले भी उतना ही सुख शांति महसूस करता था, आज भी ऐसा कोई करे तो ऐसी सुख शांति महसूस करेगा, हजारों वर्षों के बाद भी कोई करेगा तो ऐसी सुख शांति महसूस करेगा। इसलिए सनातन कहा धर्म को। ये बात कोई सुनेगा ही नहीं तो बेचारा उलझा रहेगा, ये मेरा धर्म, ये तेरा धर्म, ये बौद्ध धर्म, ये हिंदू धर्म, ये जैन धर्म, ये ईसाई धर्म, ये मुस्लिम धर्म, सारा जीवन बिता देगा इस जंजाल में, इस जंजाल के बाहर निकल नहीं पाएगा और अपने को इस धोखे में रखेगा, मैं बड़ा कट्टर बौद्ध हूं, कट्टर जैन हूं, कट्टर हिंदू हूं। उसको धर्मवान बनने की कोई मन में उत्कंठा ही नहीं जागेगी, क्योंकि अमुक अमुक परंपरा की, अमुक अमुक संप्रदाय के, अमुक अमुक कर्मकांड पूरे कर लेता हूं ना, अमुक अमुक दार्शनिक मान्यता मान लेता हूं ना, अमुक अमुक व्रत उपवास कर लेता हूं ना, तो मेरे जैसा धर्मवान कौन होगा इस जंजाल में। तो ऐसा व्यक्ति कौन जो असुतवा है, सुना ही नहीं। धर्म का ये सार्वजनीन स्वरूप उसने कभी सुना ही नहीं, जाना ही नहीं। तो इन दोनों के मुकाबले असुतुआ के मुकाबले सुतुआ बड़ा भाग्यशाली, लेकिन ये सुतुआ श्रुतवान सुन के ही रह जाए, आगे कदम नहीं उठाए, तो उसके भाग्य के दरवाजे तो खुले, उसके लिए मुक्ति के दरवाजे तो खुले, लेकिन चला नहीं उस रास्ते पर, तो पर्यत्ते हमें सुतुआ बनाती है, श्रुतवान तो हुए। धर्म को अच्छी तरह समझ करके, धर्म को धारण करके कोई व्यक्ति मुक्त हुआ, उस व्यक्ति की वाणी सुनी और समझी, कल्याण की बात हुई। लेकिन सही कल्याण जब होता है तब आगे कदम उठाना शुरू करते हैं, तो उसे पटिपत्ति कहा। प्रतिपत्ति, प्रतिपादन, प्रतिपद, एक एक कदम, एक एक कदम अब चलने लगा रास्ते पर। पहले तो देखता है कि ये रास्ता है, ऐसा रास्ता है, धर्म ये होता है, धर्म को इस प्रकार धारण किया जाता है, ये सारा का सारा पर्याप्ति में समझता है बुद्धि से। लेकिन चलने लगा तो प्रतिपादन करने लगा, एक एक कदम, एक एक कदम। पहला कदम उठाता है कि भाई शील पालन करना धर्म का पहला कदम है। शील ही नहीं पालन करेंगे, सदाचार ही नहीं पालन करेंगे, शरीर और वाणी के दुष्कर्मों से विरत ही नहीं होंगे, तो अगला कदम उठा नहीं पाएंगे। ये बात पर्याप्ति में समझ जाएगा। पर्याप्ति यही कहेगी, बुद्धि से समझाती है ना, तो कहेगी देख भाई, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना, उसे और लोगों के साथ रहना है, परिवार के लोगों के साथ रहना है, समाज के लोगों के साथ रहना है, कोई घर बार छोड़ के सन्यासी हो जाए, सन्यासिनी हो जाए, तो भी कहाँ भाग के जाएगा, समाज के साथ तो संपर्क बना ही रहेगा, तो हर अवस्था में अन्य लोगों के संपर्क में रहना है, तो हम कोई ऐसा काम नहीं करें, शरीर और वाणी का कोई ऐसा काम नहीं करें जो अन्य प्राणियों का अहित करता हो, अमंगल करता हो, उनके सुख शांति भंग करता हो, ऐसा नहीं करें। तो बुद्धि के स्तर पर समझेगा कि अगर मैं अपने आसपास के सारे लोगों में अशांति ही अशांति पैदा कर देता हूं तो मुझे शांति कहां मिलेगी, मैं चारों ओर आग लगा देता हूं तो मुझे शीतलता कहां से मिलेगी, ऐसा बुद्धि से समझेगा। यह भी बुद्धि से समझेगा कि दुराचार का जीवन जी करके, शरीर और वाणी से किसी व्यक्ति की सुख शांति भंग करने से उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता, इसी प्रकार कोई व्यक्ति मेरे प्रति दुराचार करे, मेरी सुख शांति भंग करे, मुझे अच्छी नहीं लगती, तो जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती वोरों को भी नहीं अच्छी लगती, मुझे बचना चाहिए, ऐसे दुष्कर्म से मुझे बचना चाहिए। और समझेगा कि भाई जब जब मैं किसी शील सदाचार को तोड़ता हूं, हत्या करूं, चोरी करूं, व्यभिचार करूं, झूठ बोलूं, कड़वी बात बोलूं, कोई भी वाणी और शरीर का दुष्कर्म करूं, तब तक नहीं कर सकता जब तक कि अपने मन में कोई विकार न जगा लूं, क्रोध जगाऊं, द्वेष जगाऊं, वासना जगाऊं, भय जगाऊं, ईर्ष्या जगाऊं, लोभ जगाऊं, कोई ना कोई विकार भीतर जागे, तब वो वाणी पर प्रकट होता है और कोई दुष्कर्म होता है वाणी से, वो शरीर पर प्रकट होता है, दुष्कर्म होता है शरीर से। ये बात भी बुद्धि से समझता है, लेकिन जब आगे कदम रखने लगता है तब यही बात अनुभूति से समझने लगता है। अरे मशील सदाचार का जीवन जीकर समाज के अन्य लोगों पर कोई एहसान नहीं कर रहा, किसी को मारता नहीं इसलिए उस पर एहसान नहीं कर रहा, किसी की चोरी नहीं करता इसलिए एहसान नहीं कर रहा, कोई कड़वी बात नहीं कहता इसलिए एहसान नहीं कर रहा, मैं अपने आप पर एहसान कर रहा हूं, क्योंकि जैसे ही कोई सा भी शील तोड़ता हूं मैं अपनी हानि करने लगता हूं, अपना अहित करने लगता हूं, अपना अमंगल करने लगता हूं, खूब समझने लगेगा। जैसे आगे बढ़ेगा भीतर की संवेदनाओं को देखने का कि शक्ति प्राप्त कर लेगा, क्षमता प्राप्त कर लेगा, खूब समझ में आने लगेगा। पर आरंभ तो पर्याप्ति से हुआ, बात समझ में आई, अच्छा शील का पालन करना जरूरी है। तो पहला कदम शील पालन करना शुरू किया, प्रतिपादन शुरू हो गया यहीं से। शील पालन करने में ही धर्म के मार्ग पर कदम रखना शुरू कर दिया, प्रतिपद प्रतिपद प्रतिपद, एक एक कदम चलने लगा। लेकिन उसके साथ एक बात और जुड़ी, बात समझ में आ गई कि भाई शील पालन करो, शील पालन करो। यह बात तो बहुत ठीक है, मैं भी समझता हूं शील पालन करना चाहिए, करना चाहिए, पर करें कैसे? मन ही वश में नहीं है ना। तो मन को वश में करने का काम भी साथ साथ शुरू कर देता है। इसीलिए प्राचीन परंपरा से ये बात चली आई, जो अब भी शुरू की गई भारत में और विश्व में, कि ऐसे किसी तपोभूमि में चले आओ जहां पर शीलों का पालन करते हुए मन को वश में करने का अभ्यास शुरू कर दो। तो मन को वश में करने का अभ्यास जितना जितना पुष्ट होता चला जाएगा, देखेंगे शील पालन करना उतना उतना आसान होता चला गया। एक ओर शील पालन कर रहे हैं इसलिए हमारी समाधि सम्यक होगी, हमारी समाधि दृढ़ होगी, दूसरी ओर समाधि सम्यक हुई जा रही है, दृढ़ हुई जा रही है, तो देखेंगे जीवन में शील पालन करना आसान हुए जा रहा है। तो दोनों साथ साथ चलने लगे, प्रतिपद प्रतिपद, कदम 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 कदम, ये आरंभ हुई। ये प्रतिपदा है धर्म की, प्रतिपदा माने मार्ग है जिस पर कदम कदम चलना होता है। तो पटिपत्ति, तीसरा पटिवेधन, केवल मन को अपने वश में करके शील सदाचार का जीवन जिए तो कहेंगे ये व्यक्ति धर्मवान है, इसमें कोई संदेह नहीं। सदाचार का जीवन जी रहा है, मन इसके वश में है, तो धर्म के रास्ते चल रहा है। पर ये नहीं कह सकते कि यह व्यक्ति मुक्त हो गया, क्योंकि भीतर ही भीतर अंतर मन की गहराइयों में विकार पैदा करने का स्वभाव वैसा का वैसा बना हुआ है और अंतर मन तक उसकी पहुंच ही नहीं हुई। शील का पालन करते हुए, समाधि का अभ्यास करते हुए, समाधि खूब दृढ़ हो जाए। आज के भारत में तो दुर्भाग्य से समाधियों की विधियां भी नष्ट हो गई, जो कि 2500 वर्ष पूर्व के भारत में विद्यमान थी। 8 तरह के ध्यान, आज तो लोग 8 तरह के ध्यान क्या होते हैं उनका नाम तक नहीं जानते, करना तो बहुत दूर की बात रही। लेकिन 8 तरह के ध्यान कर लेने वाला व्यक्ति भी नहीं कह सकते कि ये मुक्त हो गया, बहुत विकार निकल जाते हैं। समाधि में भी बहुत विकार निकल जाते हैं, लेकिन जड़ों तक पहुंच नहीं होती, क्योंकि अगला कदम नहीं उठाया पटिवेधन का। तो अंतर मन की गहराइयों में दबे हुए विकार तह की तह पड़ी हुई, आवरण पर आवरण पड़े हुए, अवगुंठन पर अवगुंठन चढ़े हुए, उनका भेदन नहीं हुआ, उनको दूर नहीं किया। तो ये जिनको उन दिनों की भाषा में अनुशय क्लेश कहा भगवान ने, माने वो विकार जो अनुशय सोए हुए हैं और अनुसरण कर रहे हैं, चित्त धारा के साथ अनुसरण कर रहे हैं, एक भाव से दूसरे भाव, एक भाव से दूसरे भाव, एक जीवन से दूसरे जीवन, समय समय पर उनमें से कोई सा उठता है उसे तो सवार होता है, चले जा रहे हैं, बाकी चले जा रहे हैं, साथ साथ चले जा रहे हैं, साथ साथ चले जा रहे हैं, और जो उठता है और संवर्धन होकर के फिर नीचे जाके जम जाता है। उस स्वभाव जो है हमारा अंतर मन की गहराइयों में विकारों को संग्रहित रखने का भी और विकारों के संवर्धन करते रहने का भी जो स्वभाव है, वहां तक हमारी पहुंच ही नहीं हुई। तो उसके लिए अगला कदम, अगला क्षेत्र पटिवेधन, प्रतिवेधन, भेदन करना। चीरना, छेदन, भेदन, उसी को विपश्यना कहते हैं। यही विपश्यना है, उसी को प्रज्ञा कहते हैं। यही प्रज्ञा है, बींधती हुई प्रज्ञा। ऊपर ऊपर से विकारों को दूर कर लेना अच्छी बात है, लेकिन जड़ों से नहीं निकाल पाए तो काम पूरा नहीं हुआ, अभी अधूरा ही काम हुआ। जड़ें कायम रही तो अब तो लगता है कि हमारा चित्त बड़ा निर्मल हो गया। देखो, राग नहीं जागता, द्वेष नहीं जागता, भय नहीं जागता, अहंकार नहीं जागता। देखो, हम पहले से कितने सुधर गए। भीतर बहुत सुख शांति भी महसूस होने लगी। लेकिन जो जड़ें कायम हैं, वो न जाने कब अपना सिर उठा लेंगी, कब उनका फैलाव होना शुरू हो जाएगा। ये एक तरह के स्लीपिंग वॉल्केनोज हैं, कब फूट पड़ेंगे नहीं कह सकते, कब फूट पड़ेंगे। सुषुप्त ज्वालामुखियां हैं, कभी भी फूट पड़ेंगे। उनकी जड़ें निकाले बिना मुक्त नहीं होते। पटिवेधन ये काम करता है, भेदन करता है। पर्दे पर पर्दे जो पड़े हुए हैं उनको तोड़ता है, चीरता है, चीरता है, तो उससे अधिक सूक्ष्म सत्य गहराइयों वाला प्रकट होता है। उसे चीरता है, दूर करता है, और गहराइयों वाला प्रकट होता है। यही विपश्यना है। विपश्यना की व्याख्या पुराने जमाने की भाषा में की गई, पंजत्ति थपित्वा विशेषेन पश्यति इति विपश्यना। पंजत्ति थपित्वा, थपित्वा दूर करता है, चीर करके दूर करता है, अलग अलग कर देता है। पंजत्ति जो प्रज्ञप्त सत्य है, प्रकट सत्य है, भासमान सत्य है, ऐसा प्रकट होता है, ऐसा प्रतीत होता है, ये यूं लगता है, उसके टुकड़े टुकड़े करने लगे तो देखे, अरे यूं लगता था पर वस्तुतः तो कुछ और है, यूं लगता है पर वस्तुतः कुछ और है। तो बस यही विपश्यना है, उसका छेदन भेदन करते हुए। तो विशेषेन पश्यति, विशेष रूप से देखता है। क्या विशेष रूप से देखता है? उस सच्चाई को यथाभूत जैसा है वैसा है। उसका क्या स्वभाव है, उस पर अपनी किसी मान्यता का आरोपण नहीं होने देता, नहीं तो जैसा है वैसा नहीं देख पाएगा। सारी शरीर स्कंद की सच्चाई क्या है, तो कैसा है तो देखेगा। उत्पाद होता है, व्यय होता है, उत्पाद होता है, व्यय होता है। अरे अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, ऐसे ही चित्त को देखेगा, उत्पाद होता है, व्यय होता है। चित्त वृत्ति को देखेगा, उत्पाद होता है, व्यय होता है। और इन सब को देखने के लिए चित्त और शरीर, चित्त वृत्ति और शरीर, इन दोनों के संस्पर्श से जो संवेदना हो रही है उसे अनुभूतियों से देखेगा। अनित्य है, अनित्य है, उत्पाद होता है, व्यय होता है। जैसे विपश्यना में करते आए हो, विपश्यना का काम शुरू किया कि पटिवेधन का काम शुरू हो गया। शरीर पर संवेदनाओं का बोध होने लगा और ये अनित्य हैं, ये होश जागने लगा, बस काम शुरू हो गया, पटिवेदन का काम शुरू हो गया। अन्यथा तो ये मट्टी के लोथड़े जैसा शरीर मृणमय है, क्या हो रहा है इसमें, कुछ नहीं हो रहा। जो व्यक्ति कभी विपश्यना न करे, उसे कहें कि तेरे शरीर में प्रतिक्षण उदय व्यय हो रहा है, क्या समझे बेचारा। बुद्धि से भले स्वीकार कर ले कि सारे संसार में उदय व्यय हो रहा है, शरीर में भी होता होगा, होता है, ऐसा मानना शुरू कर दे, जानेगा नहीं, मानने से बात नहीं बनती, जानेगा नहीं। बस जानना शुरू किया तो इसका मतलब एक आवरण तो उतरा, वो आवरण जो हमको सच्चाई को केवल बुद्धि के स्तर पर जान करके हमारा रास्ता रोक रहा था, वो आवरण दूर हुआ। अब अनुभूति बात वाली बात आने लगे, उत्पाद होता है, व्यय होता है। स्थूल स्थूल संवेदना है तो उत्पाद होता है, समय लगता है, व्यय हो जाता है, उत्पाद होता है, समय लगता है, व्यय हो जाता है। करते 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 सभी तो साधक हैं, पुराने साधक हैं, उस अवस्था पर पहुंचते हैं कि सारा का सारा शरीर इसका घनत्व समाप्त हो जाता है, सॉलिडिटी समाप्त हो जाती है, केवल तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे रह जाती हैं। ऐसे ही सारा चित्त और चित्तवृत्तियां घनीभूत होकर के आते हैं। जैसे कोई भय आया तो बड़ा घनीभूत होकर के आया, क्रोध आया बड़ा घनीभूत होकर के आया, वासना आई बड़ी घनीभूत होकर के आई, ईर्ष्याएं बड़ी घनीभूत होकर के आई और इस विद्या द्वारा सीखते हैं, अच्छा भय आया है, अच्छा तुझे भी स्वीकार करते हैं, ये सच्चाई इस क्षण की भय है। अब देखें शरीर में क्या हो रहा है, संवेदनाओं के स्तर पर क्या हो रहा है, उदय है व्यय है, उदय है व्यय है। यूं देखते देखते वासना आई है, उदय है व्यय है, उदय है व्यय है। ईर्ष्या आई है, क्रोध, जो विकार जागा तो चित्त अपनी चित्त वृत्तियों को लेकर के हमारे सामने प्रकट हुआ, घनीभूत होकर के प्रकट हुआ, हमने देखते 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 उसके टुकड़े 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 कर दिए। तो सच्चाई समझ में आने लगी कि जहां तक ये भौतिक क्षेत्र है, हमारे शरीर की का प्रपंच है, और जहां तक चैतसिक क्षेत्र है, चित्त का प्रपंच है, ये दोनों के दोनों अनित्य हैं, अनित्य हैं, नश्वर हैं, भंगुर हैं। अनुभूति से जानने लगे ये भेदन हो रहा है, इसलिए जानने लगे। प्रज्ञा काम कर रही है, इसलिए जानने लगे। प्रज्ञा का सही अर्थ होता है कि प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान नहीं। परोक्ष ज्ञान तो सुनी सुनाई बात परियत्य में आएगी। अब पटिपत्ति से आगे बढ़ गए हम, पटिवेदन पर जाने लगे तो प्रज्ञा जागी, माने प्रत्यक्ष ज्ञान जागा, अपना ज्ञान जागा, ये अनित्य है। बुद्ध ने कहा इसलिए मानने की बात नहीं, महावीर ने कहा इसलिए मानने की बात नहीं, गीता कहती है इसलिए मानने की बात नहीं, कुरान कहती है इसलिए मानने की बात नहीं, ये अनित्य है, प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, हमारा अपना प्रत्यक्ष ज्ञान है तो प्रज्ञा है, अनित्य है, उत्पाद होता है व्यय होता है, उत्पाद होता है व्यय होता है। यूं देखते देखते बात समझ में आने लगती है कि भाई ये जो स्थूल स्थूल दुख आया सामने, बैठते ही पीड़ा आई, भारीपन आया, गर्मी आई, अमुक आया, बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। अरे वो तो दुख है ही, लेकिन काम करते करते छठे दिन, सातवें दिन, आठवें दिन, किसी को एक शिविर में नहीं, दूसरे में, तीसरे में, ये जो सारे शरीर में रोमांच होने लगा, पुलक रोमांच होने लगा, तरंगे ही तरंगे ही तरंग, बड़ा सुखद मालूम हुआ, बड़ी सुखद अनुभूति हुई। तो सचमुच प्रज्ञा से काम कर रहा है तो समझेगा ये भी अनित्य है, ये भी अनित्य है, और इसे अनित्य है ऐसा न समझ करके इसके प्रति आसक्ति पैदा कर ली तो बड़ा दुखी हो जाएगा। खूब समझ में आएगा, क्योंकि कितने ही सुखद संवेदना क्यों ना चले, देर सबेर समाप्त होने ही वाली है, और हर सुखद संवेदना जब समाप्त होती है तो काहे में पलटती है, दुखद में पलट जाती है। तो दुख समाया है उसके भीतर, और बड़ी बात कि जैसे ही सुखद संवेदना अनित्य है ये समझना भूल गया तो आसक्ति जागी, आसक्ति जागी तो ये सुखद संवेदना के नष्ट होने पर, समाप्त होने पर और अधिक दुख आया, बहुत बड़ा दुख आया, क्योंकि आसक्ति पैदा कर ली। खूब समझने लगा तो अब समझने लगेगा, जैसे जैसे गहराइयों में जाएगा, अनुभूतियों पर उतरेगी बात, वैसे वैसे समझता चला जाएगा कि अरे जो दुखद संवेदनाएं हैं वो तो दुख है ही, जिसको सुखद देखा वो भी दुख ही है, उसी में दुख समाया हुआ है, ये शरीर और चित्त का सारा प्रपंच दुख ही है, दुख ही है। ये शरीर और चित्त के प्रपंच में ये 6 इंद्रियां हैं, और इन इंद्रियों के जो विषय हैं, और इंद्रियों के विषय का इंद्रियों से संपर्क होता है, उस संपर्क होने से संवेदना होती है, अरे दुख ही है, दुख ही है, ये समझ में आएगा। तो एक लक्षण शरीर और चित्त का, एक लक्षण प्रकट होता है अनित्य बोध में, दूसरा लक्षण प्रकट होता है दुख बोध में, और आगे बढ़ता है तो इस शरीर में कहां मैं रे, किसको मैं कहूं, कौन सी तरंग है जिसको मैं कहूं, कौन सा बुदबुदा है जिसको मैं कहूं, कौन सी तरंग है जिसे मेरा कहूं, कौन सा बुदबुदा है जिसे मेरा कहूं, कौन सी तरंग है जिसे मेरी आत्मा कहूं, कौन सी तरंग है जिसे, कौन सा बुदबुदा है जिसे मेरी आत्मा कहूं, ना बाबा ना, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरी आत्मा नहीं, क्योंकि इस पर मेरा जरा सा भी प्रभुत्व नहीं, मेरा अधिकार नहीं, मेरी मलकियत नहीं। घटनाएं अपने आप घट रही हैं, मैं चाहूं रुक जाएं तो रुकते नहीं, मैं चाहूं बदल जाएं तो बदलते नहीं, मेरी कोई मलकियत नहीं, तो मैं कैसे हुआ, मेरा कैसे हुआ, मेरी आत्मा कैसे हुई, ये बात खूब समझ में आने लगती है। तो अनात्म बोध जगता है, ये दार्शनिकों वाला अनात्म नहीं है, उससे कोई लेन देन नहीं, अहम टूटता है, किसको मैं माने जा रहा था, किस मैं के मारे विकार पर विकार पैदा किए जा रहा था, किसको मम माने जा रहा था, किस मम के मारे आसक्ति पर आसक्ति पैदा किए जा रहा था, विकार पर विकार पैदा किए जा रहा था, वो पिघलने लगता है, अहम पिघलता है, मम पिघलता है, तो अनात्म में प्रतिष्ठित होता है, निर्मल होने लगता है, विकारों से छुटकारा पाने लगता है। ये सारा का सारा काम पटिपत्ति का, पटिवेधन का, पटिवेधन का टुकड़े टुकड़े करके देखता है। पञ्यति थपित्वा प्रज्ञापित प्रज्ञापित सत्य को दूर करके टुकड़े टुकड़े करके देखता है, तो विशेष रूप से देखता है। विचयेन पश्यति, जो चयन हो गया, एकत्र हो गया, उसको टुकड़े टुकड़े करके विचयेन कर, विभज्येन पश्यति, विभाजन कर करके देखता है, तो विपश्यना हुई। बस ये प्रतिपादन है, ये प्रतिपादन के बाद अगला कदम पटिवेधन है, यही काम करना है। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए ये रोज रोज के प्रवचन, इस बात को खूब अच्छी तरह समझने के लिए क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, भगवान ने इसे कैसे समझाया, कब समझाया, ये सारी बात हमारे सामने आनी शुरू हो जाएगी, तो बहुत प्रेरणा जागेगी। भगवान की वाणी का ये सूत्र, इसे महासती पठान सूत्रं कहा, सूत्र भगवान की वाणी। कोई भी व्यक्ति जो भगवान बन जाएगा, मुक्त हो जाएगा, उसकी वाणी हमेशा स्वखातो भगवता धम्मो, कोई भगवान होगा तो उसके द्वारा सिखाया गया धर्म स्वखातो सुआख्यात होगा, अच्छी तरह समझाया हुआ होगा। ये विशेषता है एक धर्म की। अधूरी सी बात कह दी, जिसका कोई कोई अर्थ लगाए, कोई कोई अर्थ लगाए, तो समझना चाहिए कि किसी दार्शनिक का खेल है कुछ, या कोई रहस्यवादी का कोई रहस्य है, धर्म की बात नहीं है। धर्म की बात होगी तो बहुत अच्छी तरह समझाई जाएगी, स्वख्यातो सुआख्यात हो। तो सूत्र भगवान की वाणी का सूत्र है, तो बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ, भले एक बात को दो बार कहना पड़े, चार बार, लोगों के पल्ले पड़नी चाहिए ना, अपना पांडित्य थोड़ी प्रदर्शन करना है, खूब समझा के बात कहे ताकि लोग खूब अच्छी तरह समझ जाएं और उसका पालन करें। आगे जाकर के ऐसे सूत्र बनने लगे कि जिनमें दो चार पांच शब्दों में एक सूत्र आ गया, दो चार पांच शब्दों में एक सूत्र आ गया, तो ये सूत्र है, संक्षेप में कोई बात कह दी। भगवान की वाणी में ऐसा नहीं होता, किसी बुद्ध की वाणी में ऐसा नहीं होता, किसी अरहंत की वाणी में ऐसा नहीं होता, किसी मुक्त पुरुष की वाणी में ऐसा नहीं होता, समझाएगा अच्छी तरह। तो सूत्र माने खूब अच्छी तरह समझाया हुआ, ये विषय खूब अच्छी तरह समझाया। क्या विषय? महासतिपट्ठान, सतिपट्ठान का विषय खूब अच्छी तरह समझाया। महाशब्द इसलिए जोड़ा कि ये सतिपट्ठान का उपदेश अनेक जगह अनेक बार दिया गया होगा, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में दो जगह मिलता है। एक जगह उसे सतिपट्ठान सूत्र कहा गया, एक जगह महासतिपट्ठान कहा गया। वो इसलिए कि महासतिपट्ठान में कुछ बातें और स्पष्टीकरण की जोड़ दी गई, इसलिए महासतिपट्ठान। हम जिसका पारायण कर रहे हैं या करेंगे अब, वो महासतिपट्ठान सूत्र होगा। सतिपट्ठान, सति क्या? साधना करते हुए इस बात को खूब समझा है, सब पुराने साधक हैं। सति माने स्मृति, पठान माने प्रतिष्ठापित। क्या सति, क्या स्मृति? आज के भारत में जैसे बार बार हम समझाते हैं, 2500 वर्ष में भाषा बदल जाती है, शब्द बदल जाते हैं, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, तो आज तो स्मृति का एक ही अर्थ रह गया, कोई याददाश्त है, कोई मेमोरी है, उसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग होता है। 2500 वर्ष पूर्व की भारत में और विशेषकर साधना के क्षेत्र में ये अर्थ नहीं होता था। ये अर्थ सामान्य बोलचाल की भाषा में था भी, लेकिन जहां साधना की बात आएगी वहां याददाश्त की बात नहीं है, वहां उसका अर्थ सजगता। सती माने स्मृति माने सजगता, और सजगता हमेशा इस क्षण की होती है। बीते हुए क्षणों पर हम सजग नहीं रह सकते, बीते हुए क्षणों को हम याद कर सकते हैं, सजग कैसे रहेंगे? आने वाले क्षणों की हम कल्पना कर सकते हैं, उस पर चिंतन कर सकते हैं, सजग कैसे रहेंगे? सजगता का अर्थ यही है कि इस क्षण के प्रति सजगता। तो सती का यही अर्थ इस क्षण की जो सच्चाई प्रकट हुई उसके प्रति सजग रहना, उसके प्रति सावधान रहना, उसके प्रति सचेत रहना, यही सती। स्मृति को याददाश्त के रूप में ले गए, धीरे धीरे देश से ये विद्या लुप्त हो गई, इस शब्द का अर्थ लुप्त हो गया, तो स्मृति बन गया, याददाश्त बन गई, तो स्मरण बन गया, स्मृति से स्मरण बन गया, तो सुमरण बन गया। तो अब इसका सुमरण कर रहे हैं, ध्यान तो कर रहे हैं, पर उस ध्यान में इसका सुमरण करते हैं, उस देवी का सुमरण, उस देवता का सुमरण, ईश्वर का सुमरण, अल्लाह मियाँ का सुमरण, कि बुद्ध का सुमरण, कि महावीर का सुमरण कर रहे हैं, माने उसको याद कर रहे हैं। तो क्या याद कर रहे हैं? उन दिनों भी एक शब्द चलता था, एक साधना के तरीका चलता था, बुद्धानुसति, बुद्ध का स्मरण और उसका स्मरण लगातार हो, अनुसति, बुद्धानुसति। तो बुद्ध के रूप का नहीं, बुद्ध के रंग का नहीं, बुद्ध की आकृति का नहीं, बुद्ध के गुणों का, बार बार बुद्ध के गुणों का स्मरण करते हुए अपने भीतर प्रेरणा जगाएं और उन गुणों को अपने जीवन में धारने का प्रयास शुरू कर दें, वो उन दिनों की बुद्धानुसति होती थी। धीरे धीरे जब विद्या लुप्त हो जाती है तो विकृत होकर के ही लुप्त होती है, तो उसके रूप का ध्यान, ऐसे ही अन्य भी रूप का ध्यान, जगह जगह रूप का ध्यान होने लगा, उसका इस सती से कोई दूर परे का भी संबंध नहीं। क्या रूप का ध्यान करेंगे, किसको रूप कहें? एक चित्रकार की अपनी कल्पना है, उसने तो देखा नहीं, न बुद्ध को देखा, न उसने किसी राम को देखा, न उसने किसी कृष्ण को देखा, न उसने किसी ईश्वर को देखा। अब उसकी अपनी कल्पना है, उस कल्पना से उसने एक चित्र बना दिया और हम बार बार उस चित्र को देखते देखते उसी का ध्यान करने लगे, तो कल्पना का ध्यान करने लगे। कोई मूर्तिकार है, उसने न बुद्ध को देखा, न महावीर को देखा, न राम को देखा, न कृष्ण को देखा, न किसी देवी को देखा, न देवता को देखा, न किसी ईश्वर को देखा, अपनी कल्पना से कुछ सोचता है और वैसी एक मूर्ति गढ़ देता है। हम बार बार उसे देखकर उसका ध्यान करने लगे तो कल्पना का ध्यान करने लगे ना, और क्या करने लगे हम। ऐसे ही कोई शब्दों का माहिर होता है, कोई कवि होता है, वो ऐसा शब्द चित्र तैयार करता है, शब्दों में सारी व्याख्या करता है, तो रूप की व्याख्या करता है। उसने भी कल्पना की, अपने शब्दों के द्वारा किसी का रूप दिखाया। इसका इस स्मृति से दूर परे का भी संबंध नहीं है, यह बात खूब अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, दूर परे का भी संबंध नहीं है, नहीं तो धोखे का रास्ता हो जाएगा। कोई ना कोई आकृति, कोई ना कोई रूप हमारे सामने आने लगेगा और हम सच्चाई से विमुख हो जाएंगे। इस रास्ते कल्पना को नजदीक नहीं आने देना चाहिए, तो सती बड़ी कल्याणकारी सती होगी। जो अनुभव हो रहा है अपने इस 3.5 हाथ की काया के भीतर, अपने शरीर से संबंधित कोई सच्चाई प्रकट हुई है और अपने चित्त से संबंधित कोई सच्चाई प्रकट हुई है और इन दोनों के इंटरेक्शन को लेकर के कोई सच्चाई प्रकट हुई है, बस उसके प्रति सजग है, क्योंकि वो सच्चाई है और हमारी अनुभूति पर उतर रही है। इसलिए सती के साथ साथ संप्रज्ञान को जोड़ा भगवान ने। आगे जब पाठ करेंगे, पारायण करेंगे, तो देखेंगे आतापि संप्रजानो सतीमा, आतापि संप्रजानो सतीमा। जब कभी किसी ने भगवान से प्रश्न किया कि महाराज ये सती सती आप कहते हैं, क्या सती होती है, तो आतापि संप्रजानो सतीमा साथ कहते थे। बिना इस संप्रजानो के, बिना इस संप्रज्ञान के सती सती नहीं होती, हमें मुक्त नहीं कर सकती, वो साधना का अंग नहीं है। अन्यथा तो सर्कस के टाइट रस्सी पर चलने वाली नर्तकी, सर्कस की लड़की बड़ी सजग रहती है, कितना बैलेंस रखती है अपना, जरा सा भी सजगता उसकी दूर हुई कि गिर पड़े और अपना हाथ पांव तोड़ ले या अपना जान खो देवे, बड़ी सजग रहती है, पर वो तो नहीं अरंत बन पाती। अरे अरंत का श्रोतापन भी नहीं बन पाती, चित्त को जरा सा भी निर्मल नहीं कर पाती, वो सती हमारे किस काम की। ऐसे ही रंगमंच पर नर्तन करने वाली कोई नर्तकी अपने एक एक हाव भाव के प्रति कितनी सजग रहती है, बहुत सजग है, सती तो है, संप्रज्ञान नहीं है, मुक्त नहीं हो सकता कोई। सती वही हमारे काम की है जिसके साथ संप्रज्ञान जुड़ा हुआ है, वही सम्यक सती है। आर्य अष्टांगिक मार्ग में जिस सती की व्याख्या की, सम्यक सती, उसके साथ संप्रज्ञान जुड़ा है इसलिए सम्यक सती है। इसी सती की बात हम करते हैं अपने 10 दिन के शिविरों में, जब कहते हैं कि हमारे 5 मित्र हैं, तो श्रद्धा है, वीर्य है, सती है, समाधि है, प्रज्ञा है। तो वहां जो सती है, ये 5 मित्र हैं, ये नए नए लोगों को धर्म की बात समझाने के लिए 5 मित्र हैं, और मित्र तो हैं ही, लेकिन पुरानी भाषा में इनको कहते थे ये हमारी 5 इंद्रियां हैं। आज की भाषा में तो इंद्रियां आंख, नाक, कान, जीव, त्वचा, मन, यही इंद्रियां हैं। ठीक है, ये भी इंद्रियां हैं, लेकिन ये इंद्रियां हैं तो समझना चाहिए क्या इंद्रिय होता है। इंद्रिय शब्द का अर्थ क्या? इंद्र के माने मालिक, राजा है, देवताओं का मालिक इंद्र है, तो मालिक है। ये इंद्रियां क्यों कहलाती है, आंख, नाक, जीभ, त्वचा इत्यादि, कि ये हमारी मालिक बन गई, हमको चाहे जैसे नचाती हैं, इसलिए इनको इंद्रिय कहा कि ये मालिक बन गई। और जिस दिन हम इसके मालिक बन गए तो बात ही बदल गई, अब हम मालिक बन गए। तो हम मालिक बन गए तो कैसे मालिक बने, ये 5ों को अगर हमने पुष्ट कर लिया, श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि, प्रज्ञा, तो ये इंद्रिय बन गई हमारी, तो इनको 5 इंद्रिय कहा गया। आगे जाकर के किसी लंबे शिविर में आओगे तो समझोगे इन्हीं को 5 बल भी कहा गया। हर साधक का, हर व्यक्ति का ये 5 बल है, 5 इंद्रियां। तो इनमें सती इंद्रिय है, बल है, बहुत बड़ा बल है। ऐसे ही आगे जाकर के समझोगे बोध्यंग होते हैं, बोधि प्राप्त करने के, बोधि के 7 अंग होते हैं, उनमें से सती एक अंग है, बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, सजगता है। सजगता नहीं रहे और सजगता अनित्य बोध के साथ नहीं रहे तो एक कदम भी मुक्ति की ओर नहीं जा सकते, बोधि की ओर एक कदम भी नहीं चल सकते। तो कैसे हमें मुक्ति की ओर जाना है, तो पहला ही कदम हमारा सती से शुरू होगा जो कि संप्रज्ञान के साथ जुड़ा हुआ होगा। वो होगा तो आगे, क्योंकि संप्रज्ञान जुड़ा है तो एक और बोधि का अंग जागेगा, धम्म विचय जागेगा। विचय माने टुकड़े कर करके धर्म को देखने लगेंगे, आते जाते जाते ऐसी अवस्था पर पहुंच जाएंगे ये सारा का सारा शरीर प्रपंच, अरे परमाणु ही परमाणु, और इस पृथ्वी धातु की प्रधानता लिए भी उत्पन्न होते हैं कि जल धातु की, अग्नि धातु की, वायु धातु, और इनके बीच में पोल, आकाश धातु, और ये 5 धातु, ये 5 भूत, ये 5 भौतिक पदार्थ, और इसके साथ ये जुड़ा हुआ चित्त, ये विज्ञान, और इसके ये सारे प्रपंच, सारा समझ में आने लगेगा। इसको धम्म विचय का टुकड़े कर करके देखने लगा, ऐसे देखने लगा तो काम करने का बड़ा बल जागा, क्योंकि अब कोई अनुभव हो रहा है साथ साथ, तो वीर जागा, खूब मेहनत करेगा और गहराइयों में जाने की कोशिश करेगा, और गहराइयों में जाएगा और जाते जाते विकार निकालेगा, और क्या करेगा। वीर्य यही है कि हम प्रतिक्रिया नहीं करें, पुरानी आदत पड़ गई प्रतिक्रिया करने की, अब नहीं करेंगे। बड़ी मेहनत होती है पुरानी आदत को तोड़ने में, वही अपने आप में बड़ा वीर्य है। ये वीर्य हमारा एक बोधि का अंग बन गया, बोध्यंग बन गया, और यूं होते होते विकार निकलने लगे तो भीतर बड़ा प्रीति प्रमोद जागा। ये पुरानी भाषा है, आज की भाषा में कहें तो बड़ा आनंद जागा, क्योंकि बड़ा पुलक रोमांच हुआ सारे शरीर में, तो प्रीति ये अपने आप में एक बोध्यंग हो गया। और ये भी शुरू शुरू में तो जैसे एक प्रवाह चलता है आनंद का, आगे बढ़ते हैं तो ये प्रवाह भी धीमा होते होते, सूक्ष्म होते होते, बड़ी प्रशांति मालूम होती है भीतर, बड़ा प्रश्रब्ध मालूम होती है, जरा भी भीतर आवाज नहीं। सांस का चलना भी उस समय बहुत भारी लगने लगे, बड़ा धीमा सांस होता है लेकिन वो भी जैसे हलचल पैदा कर रहा है, इतनी प्रशब्दि, वो बोधि का अंग बन जाता है। और आगे बढ़ते हैं, ऐसी अवस्था में समाधि, बड़ी अच्छी समाधि होती है, बोधि का अंग होता है। इतनी गहराइयों में जाते हुए भी अनित्य बोध नहीं छूटता तो उपेक्षा, समता का भाव बने रहता है। ये 7ों के 7ों हमारे बोधि के अंग 7ों पुष्ट हो जाए तो बुद्ध बन जाए, कोई बन सकता है। तो इसमें पहला कदम सती का, तो देखा सती कितनी महत्वपूर्ण है हमारी मुक्ति के लिए, इसका कितना बड़ा महत्व है। तो सती, ऐसी सती जो संप्रज्ञान के साथ जुड़ी हो, वो प्रतिष्ठापित हो, मुक्ति के मार्ग पर हमें प्रतिष्ठापित कर दे। वो स्वयं प्रतिष्ठापित हुई, हमें मुक्ति के मार्ग पर प्रतिष्ठापित किया, और हम कदम कदम बढ़ते हुए आगे चल पड़े। ये इतनी बात। और पारायण शुरू होता है, आगे बढ़ते हैं तो बात शुरू होती है एवं मे श्रुतं, ऐसा मेरे द्वारा सुना गया। इन तीन शब्दों में भारत का एक पुरातन इतिहास समाया हुआ जिसे आज भारत भूल गया। क्या एवं मे श्रुतं, जितनी भी धर्म की वाणी पढ़ेंगे अधिकांश जगह सूत्र ऐसे ही आरंभ होते हैं एवं मे श्रुतं एवं मे श्रुतं एवं मे श्रुतं, ऐसा मेरे द्वारा सुना गया। क्या घटना घटी 2500 वर्ष पूर्व, जब सम्यक संबुद्ध ने अपना शरीर त्यागा, महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, तब एक घटना घटी। बहुत बड़ी संख्या में लोग भिक्षु बन गए थे, बहुत बड़ी उससे बड़ी संख्या में लोग गृहस्थ इस मार्ग पर चलने लगे थे, और जहाँ समूह तैयार होता है वहाँ कुछ न कुछ दोष आने ही लगता है, तो कुछ लोग इसलिए शामिल हो गए भिक्षु संघ में कि सिर मुड़ाया और पीले कपड़े पहने तो अब लोग नमस्कार करेंगे, खूब आदर सम्मान होगा, अच्छी दान दक्षिणा मिलेगी, अरे ठीक है इनके बहुत अनुयायी हैं इसमें शामिल हो जाओ। उनको साधना वादना से बहुत लेन देन नहीं था, सारे लोग ऐसे नहीं थे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे आ गए थे। और उसका एक प्रमाण उस समय प्रकट हुआ, एक व्यक्ति बूढ़ा व्यक्ति, उम्र का बूढ़ा है, होश में तो अभी बच्चा ही है, बुद्ध के शरीर त्यागने पर बड़ा खुश होता है, अपनी प्रसन्नता प्रकट करता है, अपने कपड़े उछाल उछाल करके, ये उन दिनों का तरीका था, कपड़े उछाल के अपनी प्रसन्नता प्रकट करते थे लोग, तो अपना चीवर उछाल करके प्रकट करता है प्रसन्नता, अरे बड़ा अच्छा हुआ बूढ़ा चला गया, नाक में दम कर दिया इस बूढ़े ने, ऐसा मत करो ऐसा मत करो ऐसा करो ऐसा करो। गृहस्थों को तो कहा 5 शील पालन करो बस, और हम भिक्षुओं को 200 शील पालन करें तब मुक्त होंगे। अरे घरवार छोड़ा तो इस जंजाल में बंधने के लिए थोड़ी छोड़ा, हम तो मुक्त अपने जो मन में आए सो करेंगे, अब मुक्त हो गए उससे। तो जो समझदार लोग थे उन्होंने देखा कि ऐसे लोग धर्म के नाम पर आज ही नहीं भविष्य में भी धर्म को दूषित करेंगे। आज तो हम लोग साक्षी के रूप में हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवान की वाणी को सुना है, समझा है, उसका पारायण किया है, उसका पालन किया है, उसे जीवन में उतारा है और मुक्त अवस्था प्राप्त की है। आगे जाकर के इस तरह के लोग कम होते चले जाएंगे और ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी जो कि धर्म धारण वारण नहीं करते, केवल उसका लाभ उठाना चाहते हैं, लाभ सत्कार के लिए ही धर्म का उपयोग करने वाले हो जाएंगे, धर्म को वाणिज्य बना लेंगे, व्यापार बना लेंगे, तो ऐसे लोग तो वाणी को ही दूषित कर देंगे। फिर तो अपनी कोई बात भगवान के मुंह में डाल देंगे, भगवान ने ऐसा कहा था कि नहीं कहा था, भगवान ने ऐसा कहा था, ऐसे भगवान की वाणी में जोड़ देंगे क्योंकि वो वाणी उनके अनुकूल है, अथवा भगवान की कोई वाणी जो उनके प्रतिकूल है उसको निकाल देंगे। तो लोक कल्याण कैसे होगा, भविष्य में लोक कल्याण कैसे होगा? तो निर्णय किया कि हम लोगों को भगवान के जितने उपदेश हैं, 35 वर्ष की अवस्था में सम्यक संबुद्ध हुए, 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्यागा, तो इतने दिनों में इन 45 वर्षों में जो उपदेश दिए उनका एक संग्रह कर लें, संपादन कर लें। अपने ढंग से संपादन किया कि बड़े बड़े सूत्र थे उनको एक जगह एकत्र कर दिया, एक प्रकार के सूत्र थे उनको एक जगह एकत्र कर दिया। तो उन दिनों ऐसा होगा कि बड़ी पिटारियों में धर्म की पुस्तकें रखी जाती होंगी, तो पिटक कहते थे उसे, वो साहित्य जिसमें भगवान की वाणी संग्रहित की गई पिटक कहलाया, और वो तीन भागों में विभाजित हुई तो त्रिपिटक कहलाया। जैसे कोई अपने पेट में कोई चीज संभाल के रखे, जैसे पेटी में कोई चीज संभाल के रखे, ऐसे ही भगवान की वाणी को संभाल के रखा तो पाल के रखा तो पाली कहलाई, पाली त्रिपिटक। तो उसमें एक हिस्सा जो सामान्य लोगों को, जो सामान्य उपदेश दिए उसे सुत्तपिटक कहा, एक विशेष रूप से भिक्षुओं को, भिक्षुणियों को ही दिया कि तुम्हारे क्या नियम हैं, उसको उन दिनों की भाषा में विनय कहते थे, तो भिक्षुओं का क्या विनय है, तो विनय पिटक कहा। और फिर तीसरा अभिधम्म पिटक, ये मानस और शरीर का परस्पर किस प्रकार संयोग होता है, किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसका बड़ा वैज्ञानिक निरूपण, बहुत गंभीर साधकों के लिए बहुत गंभीर अवस्था में समझने लायक अभिधम्म पिटक। तो ये सारा संग्रह किया गया जिसमें 82,000 भगवान के अपने उपदेश और 2,000 उस समय के पहुंचे हुए भगवान के शिष्य अरहंतों के कहीं कोई वाणी उनकी, वो भी संग्रहित कर ली गई, तो 84,000 उपदेशों को संग्रहित किया गया। तो एक सभा इकट्ठी की कि सारी वाणी को बड़े वैज्ञानिक ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से हम संग्रहित करें। तो 500 बुजुर्ग भिक्षु अरहंतों की एक लिस्ट तैयार की कि ये इकट्ठे होकर के भगवान की सारी वाणी का संगायन करेंगे, संगायन मिल करके गायन करेंगे सारा का सारा, और फिर उसको ऑथेंटिक माना जाएगा। वैसे तो एक अरहंत भी कह देता कि ये ऑथेंटिक है तो मानते, लेकिन लोक स्वभाव तो लोक स्वभाव, ये 500 लोगों ने इकट्ठे होकर के इसको ऑथेंटिक कहा है और ये सारे के सारे भगवान के समय के हैं, तो उस बात को लोग स्वीकार करेंगे, इसलिए 500 लोग इकट्ठे हुए। लिस्ट बनने लगी, 499 पर आई, तब किसी ने कहा रुको भाई, 500वां आदमी तो वो होना चाहिए जो भगवान के साथ छाया की तरह रहा, कम से कम पिछले 25 वर्षों में तो छाया की तरह रहा, और वो था आनंद, उनका अपना चचेरा भाई, एक ही दिन एक साथ जन्मे चचेरा भाई, और बचपन में साथ खेले कूदे पढ़े लिखे बड़े हुए, ये घर बार छोड़ के बुद्ध हो गए तो वो भी निकल आया, वो भी इनके साथ हो लिया, तो साथ ही रहा छाया की तरह। लेकिन जीवन के पिछले 25 वर्षों में काम इतना बढ़ गया, इतने लोग उनके पास आने लगे सीखने के लिए, तो व्यवस्थित ढंग से नहीं होगा तो कैसे चलेगा, तो कोई एक पर्सनल असिस्टेंट चाहिए। उसके पहले भी कुछ पर्सनल असिस्टेंट थे, लेकिन कुछ गैर जिम्मेदार लोग जिनको केवल प्रतिष्ठा लेनी है कि हम भगवान के पिए हैं तो लोग हमारे ज़्यादा सम्मान देंगे, इसलिए उनके साथ लग गए, कोई इस मारे लग गए कि भगवान बहुत सी बातें कहते हैं, ये अव्याकृत है, कहने लायक नहीं है, इसमें तुमको कोई लेन देन नहीं इन बातों से, औरों को अव्याकृत है लेकिन मैं तो छाया की तरह साथ रहूंगा, मेरे कान में तो कह देंगे ये बात ऐसी है, कह देंगे। भगवान कहते थे चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए, औरों को नहीं दिखाएंगे, मुझको तो दिखाई देंगे, इस मारे भी चिपक गए कुछ, तो सब निकम्मे लोग। इस तरह के निकम्मे आदमियों से जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी, वैसे वैसे कुछ समझदार लोग साथ हों तो काम ज़्यादा हो सके। तो उन्होंने कहा अपने महापरिनिर्वाण के 25 वर्ष पहले कि भाई अब शरीर जरा जीर्ण होने लगा, हमें कोई अच्छा सहायक चाहिए। तो हर आदमी चाहे कि मैं सहायक बन जाऊं इनका, लेकिन उनकी नज़र आनंद पर, और आनंद उनकी ओर देखे भी नहीं, लोग समझ रहे हैं कि आनंद को ये चाहते हैं और आनंद उनकी ओर देखता भी नहीं। तो आनंद को समझाया, वो कहता है कि भगवान का पिए तब बनूं मैं जब मेरी शर्तें स्वीकार कर ले। वो भगवान के साथ भी शर्त रखने वाला व्यक्ति, तो 8 शर्तें रखी उसने, ये शर्तें स्वीकार करें आप तो मैं आपका पर्सनल असिस्टेंट महाराज छाया की तरह आपके साथ रहूंगा। तो उनमें से एक शर्त ये कि जहां कहीं आप जाएंगे मुझे साथ लेके जाएंगे, जहां कहीं आपका उपदेश होगा मैं साथ रहूंगा, मुझको आपका उपदेश सुनना है ना, बाकी आपकी सेवा करूंगा सारी। कभी किसी कारण से आप मुझे नहीं साथ ले जा सके, अकेले गए कहीं और वहां आपने कोई धर्म का उपदेश दे दिया, तो लौट कर आओगे बिहार में तो उसको फिर सुनाना पड़ेगा मुझे, ये शर्त आपको मंजूर हो तो कहो, फिर सुनाना पड़ेगा। तो भगवान मुस्कराए, अच्छे बाबा फिर सुनाएंगे, धर्म की बात है, दो बार कहेंगे हमारा क्या बिगड़ा, अच्छी बात। उस आदमी की मेधा शक्ति, उस आदमी की स्मरण शक्ति इतनी तेज कि जैसे कोई टेप रिकॉर्डर में, आज के टेप रिकॉर्डर में टेप कर दे तो अब चाहे जब सुन लो उससे, जैसे आज के कंप्यूटर में फीड इन कर दे तो चाहे जब देख ले उसे, ऐसे ही कोई बात एक बार सुन लेगा तो बस रिकॉर्ड हो गई चाहे जब उसको। तो पिछले 25 वर्षों में तो एक एक शब्द भगवान का उसने रिकॉर्ड किया अपने भीतर, और इसके पहले के भी सुने ही हैं क्योंकि साथ तो रहा ही। यही व्यक्ति अगर नहीं होगा इन 500 में से तो बात उचित नहीं, इसको तो साथ लेना चाहिए। तो कैसे लेवे, इस सभा का जो अध्यक्ष था महाकाश्यप, वो कहता कैसे लिवें भाई, वो तो अछूत है, अस्पृश्य है। धर्म के मार्ग में कौन अछूत होता है, क्या अस्पृश्य होता है, जन्म की बात नहीं है, क्या अछूत है, अभी अरहंत नहीं हुआ, अभी श्रोतापन्न है, और ये तो अरहंतों की सभा है, अरहंत हो जाए तो ले लेंगे। तो गए उसके पास, महाराज अब तक तो आप इतनी सेवा में लगे थे भगवान के, आपको समय नहीं मिलता था, अब तो भगवान चले गए, और विद्या तो आप इतनी जानते हैं कि कहना ही क्या, आपसे सीख सीख कर न जाने कितने लोग अरहंत हो गए, और आप अभी श्रोतापन्न हैं, तो आप प्रयत्न कीजिए, अरहंत हो जाइए, इस सभा में आइए। एक बात इसमें यह समझ लेनी चाहिए कि कोई बुद्ध किसी व्यक्ति को मुक्त नहीं कर सकता। अपने चचेरे भाई को जो जीवन भर साथ रहा, सेवा करता रहा, उसको भी मुक्त नहीं कर सके, मुक्त उसे स्वयं होना पड़ेगा। हर व्यक्ति को स्वयं अपने श्रम द्वारा मुक्त होना पड़ेगा, कोई दूसरा व्यक्ति किसी को मुक्त नहीं कर सकता। आनंद जैसा व्यक्ति श्रोतापन नहीं रह गया, अरहंत नहीं हुआ, तो अब बड़ा खुश होता है ये बात सुनकर के, बड़ी अच्छी बात, मेरे पास समय समय है, आप जरा सा रोकिए अपने इस सभा को, सम्मेलन को, मैं अरहंत होकर के आता हूं, साथ दूंगा। लग गया काम में, विद्या तो खूब जानता ही था, लग गया काम में, खूब मेहनत करता है, अरहंत होके रहूंगा, अरहंत होके रहूंगा। सिखाना बड़ा आसान है, सिखाने वाला ही जब खुद काम करने लगता है तो होश खो बैठता है। साधकों को कहता होश मत खोना, खुद होश खो बैठता है। तो बेचारा खूब जानता है विद्या को, लेकिन खुद जब करने लगा तो मैं अरहंत होके रहूंगा, मैं अरहंत होके रहूंगा। अरे मैं है ना, तो क्या अरहंत होके रहेगा तू, कुछ नहीं मिला, दिन पर दिन बीते जा रहे हैं, कुछ नहीं मिला। तो महाकश्यप आए उनके पास, देखो बस कल सुबह तो 4 महीने पूरे हो जाएंगे, उससे आगे लंबा नहीं ले जाएंगे हम, 4 महीने के बाद तो हमें आरंभ करना ही है, कल सुबह हमें आरंभ करना, आज रात का समय है तेरे पास, हो सका तो हो सका, अन्यथा हम किसी अन्य को साथ लेकर काम शुरू कर देंगे। कहता ठीक है भाई, आज रात रात और प्रयत्न करता हूँ। फिर सारी रात यही, मैं अरहंत बनूंगा, ऐसा करना सब किए जा रहा, लेकिन साथ साथ ये मैं अरहंत बनूं। रात पूरी हुई, दिन का प्रकाश थोड़ा थोड़ा आने लगा, तो एक लंबी सांस छोड़ के कहता है मैं अरहंत नहीं हूँ, मैं श्रोतापन्न हूँ। और यूं कहते हुए रात भर बैठ करके तप रहा था, अब जरा शरीर को आराम देने के लिए लेटा, तो सिर तकिए पर लगने के पहले ही बीच में अरहंत हो गया, क्योंकि इस क्षण की सच्चाई में आ गया, बाकी तो सारी बात ठीक थी ही, इस क्षण को छोड़कर आगे की बात देख रहा है, मैं अरहंत बनूं, मैं श्रोतापन्न हूं। बस इतने बात समझ में आ गई, बात ठीक हो गई। ये व्यक्ति साथ देता है उस सभा में, उस संगायन में, और हर सूत्र को एवं मे सुतंग, मेरे द्वारा ऐसा सुना गया, तो उसमें समझाता है कि भगवान ने ये बात कब कही, किसको कही, किस परिप्रेक्ष्य में कही, किस परिस्थिति में कही, किस प्रकार कही, ताकि वो सारी पृष्ठभूमि लोगों के सामने आ जाए कि ये बात इस अवस्था में ये कही गई, इस पर्याय से कही गई, इस मकसद से कही गई, तो जो वाणी है वो ज्यादा स्पष्ट हो, तो इसलिए एवं मे सुतंग ऐसा कह करके अधिकांश जो वाणी एकत्र है, इसमें संपादित है, वो अधिकांश इस तरह से आरंभ होती है। तो ये भी इसी प्रकार आरंभ होती है, एवं मे सुतंग, और फिर आगे चलती है बात, एकं समयं भगवा कुरुसु विहरति कम्मास धम्म नाम कुरुनं निगमो। एक समय भगवान, क्योंकि बताते हैं कब कहा, कहाँ कहा, तो एक समय भगवान कुरुसु विहरति, कुरु प्रदेश में, कुरु देश में विहार कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र में विहार कर रहे हैं। कम्मास धम्म नाम का निगम है, छोटा नगर है, उस नगर में कुरु की अपनी महत्ता है। आगे जाकर के धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे जैसी बातें आई, तो ये प्राचीन परंपरा कि कुरु प्रदेश धार्मिक लोगों का प्रदेश था। बहुत पुरातन समय से लोग बड़े शीलवान होते थे यहां के। बार बार भगवान ने कुरु प्रदेश की बड़ी प्रशंसा की, इसलिए हम देखते हैं कि उनके जो बहुत महत्वपूर्ण इस माने में कि बहुत गंभीर, जो सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सके, इस तरह के बहुत गंभीर जो उनके सूत्र हैं वो अनेक इस कुरुक्षेत्र में दिए गए कि वहां के लोग शीलवान हैं, वहां के लोग समझदार हैं, तो बात को खूब गहराई से समझ करके इसका पालन कर लेंगे, कल्याण हो जाएगा। बड़ी प्रशंसा कुरु की इस माने में कि हम अपना खो चुके पुराना इतिहास, क्योंकि पुराना साहित्य खो दिया हमने। एक समय भारत की यह अवस्था थी कि जैसे आज हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म इत्यादि इत्यादि कहते हैं, एक जमाने में सारे भारत में धर्म को कुरु धर्म कहते थे। क्यों कुरु धर्म कहते थे? कि ये कुरु प्रदेश के लोगों का स्वभाव है, वहां के लोग स्वभाव से ऐसा जीवन जीते हैं। तो एक घटना भगवान बताते हैं अपने पूर्व जीवन की, जब वे बोधिसत्व थे, बुद्ध बनने के पहले बोधिसत्व अनेक जन्मों में अपनी पारमिताओं को पूरा करने का काम करते हैं। तो इस स्थान पर कुरु देश में कुरु नरेश के रूप में जन्मते हैं, और सारा का सारा देश बड़ा शीलवान है, बड़ा धर्मवान है। इसी समय वो समझाते हैं एक घटना घटी कि कलिंग देश का राजा बड़ा दुखी हो गया, क्योंकि उस राज्य में बार बार दुर्भिक्ष पड़ता है, अकाल पड़ता है। तो लोगों ने कहा कि हमारा राजा धर्मवान नहीं है, इसलिए अकाल पड़ता है। राजा धर्मवान हो जाए तो ठीक हो, राजा धर्मवान होगा तो प्रजा धर्मवान होगी, राजा ही धर्मवान नहीं है, शीलवान नहीं है तो प्रजा शीलवान नहीं है, इसलिए दुर्भिक्ष होते हैं। तो राजा ने स्वीकार किया, बात तो ठीक है, हमें शीलवान होना चाहिए। तो कहाँ कहाँ से शीलवान होने के लिए हमको 5 शील लेने पड़ेंगे, तो किससे लें? तो मान्यता थी उन दिनों की, बात भी ठीक है, ऐसे व्यक्ति से ले जो स्वयं शीलवान है। तो कुरुक्षेत्र का जो राजा है, कुरु नरेश है, उसके पास अगर हमको 5 शील मिले तो ये 5 शील मैं भी पालन करूंगा, बाकी भी पालन करेंगे। तो कुरु धर्म लेने के लिए वो अपने कुछ राजदूत भेजता है, धर्म दूत भेजता है, कुछ ब्राह्मण भेजता है, जो वहां के राजा के पास एक स्लेट पर ये 5 शील लिखा के ले आए और यहां इस देश में, कलिंग देश में भी कुरु धर्म स्थापित हो जाए। तो लंबी बात है, उसमें उस व्याख्या में जाने से कोई मायना नहीं, लेकिन वो उसके पास जाते हैं तो राजा कहता है, नहीं नहीं मैं नहीं दे सकता, मेरे जीवन में मुझसे एक भूल हुई है, मेरी माँ से लो, राजमाता से लो। राजमाता के पास जाते हैं तो कहते हैं, नहीं 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 मुझसे एक छोटी सी भूल हुई है, मैं नहीं दे सकती। अच्छा है, तुम देश की रानी से लो। रानी कहती है, नहीं 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 मुझसे भूल हुई है। तो देवर से लो, छोटे भाई से, नहीं नहीं मुझसे भूल हुई है। तो राजपुरोहित से लो, वो भी कहे, नहीं नहीं मुझसे भूल हुई है। तो जो मंत्री है उससे लो, जो राजस्व मंत्री है उससे लो, जो पटवारी है उससे लो, जो देश का बहुत धनी किसान है उससे लो, जो राजा का सारथी है उससे 5 शील लो। तो पहरेदार जो नगर का, यो ऊंचे से लेकर के नीचे तक वो सबके पास घूम आए और सब कहते हैं, हमसे ये भूल हुई, हमसे ये भूल हुई, हमसे। तुम एकदम परफेक्ट आदमी से लो। वो सारी भूलें जो हम देखते हैं, तो देखते हैं किस प्रकार की भूल है। जैसे एक उदाहरण की बात, राजा कहता है कि मुझसे भूल हुई, तो क्या भूल हुई? कि साल में कोई मेला लगा करता था, उसमें हर व्यक्ति अपनी कला, अपनी कौशल का प्रदर्शन करता था। तो राजा बहुत धनुष विद्या का बड़ा पारंगत, तो वो अपनी धनुष विद्या का कौशल लोगों को दिखाया करता था उस समय, और कलाकार भी अपनी अपनी कला दिखाते थे। तो कहता है, एक बार मैंने अपने धनुष से एक तीर छोड़ा और हमारे यहाँ कोई मछुआ नहीं, कोई मछली को मारता नहीं, कुरु धर्म का देश है, कोई किसी को मारता नहीं। तो तालाब, पास का तालाब मच्छियों से भरा हुआ, और मेरी असावधानी से वो तीर उस तालाब में गिर गया, और गिरा तो ऐसा गिरा कि ऊपर नहीं आया। तो भाई, जरूर उस तीर से कोई मछली बिंध गई और उस मछली के वजन से वो तीर नीचे रह गया, इसलिए ऊपर नहीं आया, मुझसे हत्या हुई। अरे, तेरा मन नहीं मारने का, तेरे चित्त की चेतना नहीं मारने की, तूने देखा नहीं किसी को, प्राणी को मारने के लिए, और फिर भी तू ये मान करके कि मेरा दोष हो गया, तू अपने को दोषी मानता है, सारे के सारे इसी प्रकार का कोई उत्तर देते हैं। तो शीर में कितने पक्के हैं ये बात अलग है कि अतियों में जाने लगे। यही होता है कि धर्म का जब संपूर्ण स्वरूप नष्ट हो जाता है, शील समाधि प्रज्ञा तीनों मिलकर के धर्म का सर्वांगीण स्वरूप होता है, वो नष्ट होता है, तो किसी न किसी बात को लेकर के लोग अतियों में चले जाते हैं। इसी को भगवान ने बार बार रोका कि शील व्रत परामर्श, माने किसी भी शील के प्रति आसक्त होकर के बाकी काम धर्म का बंद कर देंगे तो मुक्त नहीं हो सकते, कि वो दोष की बात हो जाएगी। कोई व्रत का पालन करना बुरी बात नहीं है, किसी एक व्रत को पकड़ करके इतना खींचेंगे अतियों में चले जाएंगे और उसके साथ आसक्त हो जाएंगे, आगे का काम करेंगे नहीं, तो ये तुम्हारे लिए बाधक हो जाएगा। तो यही हुआ, ऐसा ही होता है। एक बुद्ध और दूसरे बुद्ध के बीच में जब विपश्यना समाप्त हो जाती है, शील समाधि प्रज्ञा का सर्वांगीण स्वरूप समाप्त हो जाता है, तब इस तरह की बातें होने लगती हैं। कोई बुद्ध उत्पन्न होता है तो फिर मध्यम मार्ग पर लोगों को ले आता है, लेकिन और लोगों के मुकाबले तो ये कितने अच्छे हैं कि शील पालन तो कर रहे हैं, भले अतियों में जा रहे हैं लेकिन शील पालन कर रहे हैं। ऐसे लोग बात को समझ करके समाधि का काम बहुत अच्छा कर पाएंगे, प्रज्ञा का काम बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो हम इसे कल जो आगे पारायण करेंगे उसमें देखेंगे, शील की व्याख्या नहीं हुई, इसका मतलब विपश्यना में शील का स्थान नहीं है, ये नहीं, सतिपट्ठान में शीलवान तो हैं ये लोग जो आए हैं। अब ये लोग जितनी अच्छी तरह इसको समझ लेंगे उतना ही आगे का काम इनके लिए सरल हो जाएगा। इस माने में उस क्षेत्र में ये उपदेश दिया गया। उपदेश की और बातें आगे समझेंगे, लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि ये जितनी बातें रोज के प्रवचन में होती हैं उसको केवल वाणी विलास बुद्धि विलास का विषय नहीं बना लें। ये पुस्तक सूत्र की भी मिलेगी तो इसको पढ़ने में ही सारा समय नहीं लगा दें, छुट्टी का समय भले इसे अध्ययन कर लें एक बार, लेकिन बाकी समय तो उसी प्रकार ध्यान करना है और बड़ी गंभीरता के साथ ध्यान करना है, अपने ध्यान में जरा सी कमी ना आ जाए, इस बात का बहुत ख्याल रखना है। कोई प्रश्न हो किसी के तो कागज पर लिख करके भिजवा दें, सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, ऐसा मान के नहीं चले। प्रश्न जिज्ञासु के रूप में हो, मुमुक्षु के रूप में हो, कि कोई बात नहीं समझ में आए उसे समझ करके हम रास्ते पर चल के अपना कल्याण कर लें। विवाद के लिए हो तो उत्तर नहीं मिलेगा, वो समय खराब करने से कोई लाभ नहीं, इसलिए छोटे में थोड़े में कोई प्रश्न हो जो बात को समझने के लिए हो, किसी बात को सूत्र के नहीं समझ में आए उसे समझने के लिए हो, तो अवश्य पूछें, समय पा करके उनका उत्तर देंगे। पर काम करना प्रमुख बात है, ये पर्यत्ति हमारे लिए सहायता करने के लिए, पटिपत्ति और पटिवेदन हमारे लिए प्रमुख है, इसमें जरा सी भी चूक ना हो जाए। खूब समझदारी से काम करें, लगन से काम करें। ये गंभीर शिविर है जिसमें कि नए साधकों का कोई बाधा नहीं, बड़ी शांतिपूर्वक सारे के सारे गंभीर साधक हैं, बड़ी अच्छी तरह काम कर सकते हैं, तो इसका बहुत अच्छा लाभ लें, और लाभ लेकर के किसी पर एहसान नहीं, अपना ही मंगल साधें, अपना ही कल्याण साधें, अपने स्वस्थ मुक्ति साधें। जो जो आए उन सब का मंगल हो, कल्याण हो, स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो। भवत् सर्व मंगलं, भवत् सर्व मंगलं, चाहे तो 5 मिनट विश्राम कर लें, इसके बाद फिर काम करेंगे।